इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। इन पांचों ने तुम्हें यहां फंसा रखा मिलकर, और हम युगों युगों में आते हैं, और आपको जो हमारी बात पर विश्वास कर लेता है, सत भक्ति करता है, आपको काल के जाल से छुटवा ले जाते हैं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है, कबीर जी कहते हैं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा अजर अमर यानी सतलोक, स्थिर अस्थिर माने सदा रहने वाला, ठाम माने लोक ठिकाना, स्थान हमारा सतलोक है। अजर अमर है वो कभी नाश में नहीं आता। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर ले जाओ तुमने पार करूंगा, अमर करूं और सतलोक पहुंचा दूंगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ कर लाता हूं, काल के बंधन से कर्म के बंधन को काट के सतलोक ले जाता हूं। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। एक वाणी कितनी प्यारी है, और इसको समझाने के लिए पूरा चैप्टर खोलना पड़ता आपके समक्ष, तब आपके हृदय में चेक सचमुच, या तो सारी बिजली पड़ी पड़ रही है, सारा उल्टा ज्ञान हमें प्राप्त है। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। इत्या को तो रा ना पाया, ये जम कह बंधे प्राणी। पीर पैगंबर ये संत महर्षि, ये अवतार कहला, पैगंबर माने अवतार, और कुतुब ओलिया और सुर, सुर माने ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनकी अब और अन्य पंचायत 33 करोड़ और है। सुर नर मुनिजन ज्ञानी, जिनको विद्वान पुरुष कहा करते हैं, कहते इनको तो ये मार्ग यथार्थ भक्ति मार्ग मिला नहीं, क्योंकि नहीं मिला इस कारण से ये काल के ही बंधे रहे। पीर पैगंबर कुतुब उलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। एत्या को तो रा ना पाया, ये काल के बंधे प्राणी। मुल्ला माया जग मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई। ये ज्योत स्वरूपी कहे, निरंजन में ही करता वाई। अब शिवपुराण के अंदर ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को कि तुमने अपने आप को ईश कैसे मान लिया, तुमने अपने आप को भगवान कैसे मान लिया, मैं महेश्वर हूं, मैं ही सर्वेश्वर हूं, हैं, और मेरे से ऊपर कोई भगवान नहीं। यहां परमात्मा वही कह रहे हैं, ये मुल्ला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई। ये जो स्वरूपी कहे, निरंजन में ही करता वाई। यू कालदेव को मैं भगवान, और भगवान ने कोई ना, सब ने मिस गाइड किए हुए, और उधर तो यहां कह रहा है, फिर गीता में कहे भाई और परमात्मा है कोई, उसकी उसका मेरे मन ने नहीं पता, किसी और ने पूछ ले, यानी पूछ वो तत्वदर्शी संत कभी आवे, जब यो उल्टे ज्ञान से इतना परिपक्व कर देता है उसकी मानते नहीं, और ऐसे ये हमें भरमाए बैठा है। मुल्ला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई। ये जो स्वरूपी कहे, बया निरंजन में ही करता वाई। एक न करता दो ना करता, नौ ठहराए वाई। ये नौ अवतार कहते सारे भगवान, और दसवां भी धुंधर में मिलसी सत कबीर दुहाई। अब नौ अवतार तो आ चुके हैं, दसवां और आवेगा नीकलंग नाम से, कलयुग के लास्ट में, और इन कृतगनी प्राणी इतने निकम्मे हो जाएंगे लास्ट में, ये किसे के नहीं माने, फिर इनको काटेगा तलवारें थे, जैसे परशुराम ने क्षत्रिय आकर काटे थे। ये इतने जालिम हो जाते हैं, ना दया रहती, ना धर्म रहती, ना राजनेता अच्छे रहते, राजा लोग भी इतने नीच हो जाते हैं, उन नागा पीछा कुछ नहीं दिखता, केवल पैसा पैसा दिखाई देता, फिर ये ज्ञान नहीं समझते, फिर इनका तरीका यू काल दूसरा अपनाता है, इन अवतारों को भेज देता है, और फिर इनको कतिक जैसे अड़ंगा काटा करे ना किसान अपने खेत में, ऐसे काटे जाते हैं इनको, कतिक कतलेआम किए जाएंगे, जब ये टकेंगे ये समाप्त हो जाएंगे, फिर दोबारा अच्छी वर्षा होगी, उपजाऊ जमीन हो जाएगी, सारे वन ही वन हो जाएगा, फिर पुण्यात्माओं का जन्म प्रारंभ होगा, ये सतयुग फिर प्रारंभ होगा। तो ऐसे क्या बताया है, वो दसवां अवतार भी आवेगा, वो भगवान का आवेगा, ऐसे कतलेआम करेगा और वो दसवां अवतार भगवान होगा। परमात्मा कहते यहां का इसे तक काम और इसे यहां के राम। तो सतलोक जो है वो वहां जाने के लिए आपने तैयारी करनी पड़ेगी। अब क्या बताते हैं, सैस 88 दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी, एता मैं जमका तलबाना चलियो पुरुष किशोरी। कहते हैं यहां 88,000 द्वीप और ये सभी जितने मुनीश्वर हैं ये सब काल के डोरी से बंधे हुए हैं, इन सब के ऊपर काल का हुक्म चलता है, इसलिए उस सतलोक में चलिए जहां काल का हुक्म नहीं केवल एक दयाल का हुक्म चलता है। इसमें आपने एक शब्द एक अक्षर सुना है, एक श्लोक सुना है, दोहा सुना है, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी सुर मानिए देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, और मुनिजन ये ब्राह्मण महर्षि और ज्ञानी जो विद्वान पुरुष तत्व जो इनको ज्ञानी कहते हैं ना, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16-17 में कहा है कि चार प्रकार के मुझे बजते हैं ब्रह्म की साधना करते हैं, एक अर्थार्थी, एक अर्थ, एक जिज्ञासु और ज्ञानी। तो कहता है ये तीन तो रिजेक्टेड हैं, ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं, ज्ञानी मुझे पसंद है। तो कहती हूँ ज्ञानी भी काल के बंध रहे हैं और खुद खुद गीता ज्ञान दाता यानी काल भी कह देता है 7वें अध्याय 18वें श्लोक में कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन मेरे वाली अनुतम घटिया साधना में लीन है, इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से इन्होंने मेरे को ही पूर्ण परमात्मा मान लिया और मेरे ही जाल में फंसे रहे। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया स्वर्णर मुनिजन ज्ञानी, पैगंबर कहते अवतारों को और पीर ये गुरु कहो, हिंदू हिंदू गुरु कह देते हैं, मुसलमान ने पीर कहते हैं, कुतुब ओलिया ये ऋषि मुनि और सुर नर मुनिजन ज्ञानी, ये भाषा का अंतर है, सुर माने देवता, नर माने ये मुनि जो मुनि मननशील प्राणी होते हैं मुनिजन, और ज्ञानी ये आपको बताई दिया। एत्या को तो राना पाया जमक बंधे प्राणी, इस काल का बंदरे हैं अपने आत्मा। इस सेंटेंस को अगर ईव शुरुआत करूं खोलन की एक घंटा और लग गया, क्योंकि इसमें प्रमाण देने पड़ेंगे गीता इसमें श्री देवी पुराण के अंदर, देवी पुराण के प्रथम सकंद में 24-25-26-27-28 पृष्ठ पे लिखा है कि विष्णु ब्रह्मा विष्णु से पूछते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी से पूछ रहे हैं कि आप देवेश्वर हो महेश्वर हो किसकी भक्ति करते हो, आप भी समाधि लगाए बैठे हो। विष्णु जी कहता मैं दुर्गा की पूजा करता हूं और दुर्गा से ऊपर मैं किसी भगवान को नहीं जानता, मेरे नॉलेज में कोई और भगवान नहीं है। यानी इवालिया ज्ञान के पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी एत्या को तो रा ना पाया जम कह बंधे प्राणी, इस इन त्रस्ता है नहीं, यथार्थ ज्ञान है नहीं, काल का बंधे हुए। फिर श्री मद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित केवल हिंदी, उसके 562-63 पृष्ठ पर कंसेप्ट क्लियर किया है कि दुर्गा न्यू कह रही है हिमालय को ज्ञान देते हुए कि ब्रह्म के बारे में बताती हूं, उस ब्रह्म का एक मंत्र है और उसी का जाप करो और सब बातें सब मेरी पूजाएं भी छोड़ दो, केवल यदि तुमने पूर्ण मोक्ष चाहिए। तो वो पूर्ण मोक्ष कितना बताती है कि उस ओम नाम के जाप से तुम उसको पा जाओगे और वो परमात्मा वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब दुर्गा कहती है कि मेरी पूजा नहीं करना और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर भगवान नहीं जानता, दुर्गा बता रही है कि ब्रह्म की पूजा करो वो ब्रह्म लोक में रहता है, उसका ओम मंत्र है और वो ब्रह्म लोक में रहता है। तो ओम नाम के जाप करने वाला ब्रह्म लोक में चला जाएगा। फिर 8वें अध्याय के गीता जी के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्म लोक तक गए भी फिर दो नंबर तुम आएंगे, पूर्ण मोक्ष नहीं। अब ब्रह्म के बारे में आपने सुन ही लिया गीता जी श्रीमद भगवत गीता जी में, वो कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, मेरी पूजा करोगे तो मेरा ओम नाम है और ब्रह्मलोक में जाओगे, ब्रह्मलोक तक भी वापस आओगे, मेरी भी मृत्यु है, तेरी भी मृत्यु है, इसलिए उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उसका उसके बारे में तत्वदर्शी संत की खोज करो। अब फिर कलियुग के ब्राह्मणों के बारे में बताया कि वो वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, तेरा गजर बोलिए, ये थोड़ा बताना पड़ेगा कि या ब्राह्मण की जड़ी सत लकड़ेगी। देखिए देवी भागवत, श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये संपादक थे, अप्रकाशक मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फोक्स फैक्स और फोन नंबर है। इसके 414 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, छठा स्कंध 414 पृष्ठ पे, जनमेजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। और भगवती ने कहा ब्रह्म की पूजा करो, मेरी करो मत, भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। ये मंदिर के लठी ननगाड़ रखे हैं, गढ़वाए हैं ब्राह्मणा ने, सतयुग लग रहे हैं ये इस काम पर। और वेद वेद में कितने दुर्गा का पूजा का कितने नामो निशान नहीं, और ये नहीं हो वेद के सतयुग के ब्राह्मण है, निश्चय है। ये व्यास जी कह रहे हैं, राइटर ऑफ द पुराण वेद एंड गीता जी, राजन ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, दुर्गा की पूजा करते थे। बता ये टट्टू वेद जाने थे। और देखो यहीं पर धर्म की ये सती थी त्रेता में रही, परंतु कुछ हरास हो गया, सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन इन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ले भाई अबरा खा निचोड़िया और काट दी कि आज जो ब्राह्मण हैं कलयुग में, जो परमात्मा कबीर जी का विरोध करते थे, उन्होंने किसे जुल्म किए हैं, उनका इतिहास सुनाते रहेंगे आपको परमात्मा ने जो के साथ जो इन ब्राह्मणों ने, यानी ब्राह्मण मीन ये जो उस वर्ग में उस वर्ण में जो व्यक्ति पंडिताई नहीं करता वो ब्राह्मण, वो उनकी उस कैटेगरी में नहीं आता। ये ब्राह्मण वो है जो गुरु पद पर होते हैं, ये जो ऋषि हैं जो आजकल गुरु बने फिर रहे हैं, टेलीविजन आ पाते, ये सारे ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन ब्राह्मण वही होता जो ब्रह्म ने पहचाने, परमात्मा को पहचान ले, वो ब्राह्मण। आप ब्राह्मण होगे, हम ब्राह्मण हैं अब। लेकिन वो ब्राह्मण जो कलियुग के अलग ब्राह्मण है, वो नकली, वो कहते हैं कलियुग के ब्राह्मण था जो सतयुग और त्रेता द्वापर में राक्षस होया करते, आज के तो वह ब्राह्मण है। अब जो प्रसंग चल रहा था, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, एत्या को तो रा ना पाया ये काल के बंधे प्राणी। ये जीव है ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी जन्म मृत्यु में आते, आप जैसे ही हैं, लेकिन ये पुण्य आत्मा है, कभी परमात्मा कबीर जी के साथ रह के इन्हें बहुत भक्ति की, लेकिन काल के जाल में फंस गए। इन पुण्य आत्माओं को परमात्मा इस काल ने अपना प्रयोग कर लिया, अपने लिए प्रयोग कर लिया और हमारे कंट्रोलर बनाकर हमें ही दुखदाई कर दिया। ये ऐसे ही अपना उल्लू सीधा करता है। माया आद निरंजन भाई अपने जाए अप खाई। ओए ओए। अब क्या बताते हैं परमेश्वर कबीर जी ने संत गरीबदास जी को ज्ञान दिया। अब ज्ञान परमात्मा की महिमा और काल के जाल को गरीबदास जी अपनी अमृतवाणी में समझा रहे हैं। माया आज निरंजन भाई अपने जाए आप खाई। ब्रह्मा दुर्गा और काल कहते हैं ये आप पैदा करे हैं और काल इन खावे है, अपने जाए आप खावे। अब देखो परमात्मा की वाणी कितनी निर्मल है। शिखर सुन में धर्म अन्यायी जिन शक्ति डायण मैल पठाई। अब काल तो ऊपर रहता है, दुर्गा को यहां कंट्रोलर बना दिया कि तू मेरे इस काल के जाल ने संभाल के रख और खबरदार दे किसी को कुछ बता दिया। अब ये अपने कर्माता फंसगी, ये काल के अंतर्गत होगी है? और फिर इससे हमारी उत्पत्ति होगी, इसकी मोह ममता हमारे में होगी और काल खावे है या खड़ी खड़ी देखती रह जाती है, रोती रहती है बाद में। लेकिन अब दोनों ही हमारी दुर्गति के ये कारण बताए जाते हैं। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, धर्म अन्यायी है, ये देख ले यो धर्म, धर्म का राज करनी है भी परमात्मा का, यो अन्यायी है। नाम नाम धर्म राज है, नाम नाम न्यायाधीश है, लेकिन ये पूरा अन्यायी है। शिखर सुन में यानी आकाश की टॉप मोस्ट प्लेस पे शिखर सुन में यो धर्म अन्यायी, यो ज्योत निरंजन, यो धर्म दो धर्मराज कहलाता है अपने आप को। जैसे एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है और राष्ट्रपति भी हमारा चीफ जस्टिसों का भी चीफ जस्टिस है, इनके ऊपर भी ओवरऑल कंट्रोलर है। ऐसे वो काल अलग से अपने आप को भी वो चीफ जस्टिस मानता है, धर्मराज कहता है, और एक अपना नौकर धर्मराज इसने अलग से छोड़ा हुआ है। शिखर सुन में धर्म अन्यायी जिन शक्ति डायण मैल पठाई। लाख गिरा सैनित उठ दूती माया आद तकत की कुती। सवा लाख घड़ी नित भांडे हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। कहते हैं 1,00,000 तरोज यू खावे है और 1,25,000 की उत्पत्ति करता है, यानी 25% एक्स्ट्रा जन्म देता है। लाख गिरा सैनित उठ दूती माया आद तकत की कुती। अब दुर्गा को भी साथ ही लपेट रहे परमात्मा, क्योंकि ये इसका सहयोग दे रही है। 1,00,000 ये खाता है काल, सहयोग दुर्गा का होने से इसको भी बीच में घसीटा है। लाख ग्रह सैनित उठ दूती माया आद तकत की कूती। 1,25,000 घड़ी है नित भांडे, इनको भांडा बर्तन चोला पिंड कहते, 1,25,000 रोज जन्म देता है। 1,00,000 को मार मार के खा रहा है, कसाई वाड़ा बना रखा है इसे। 1,25,000 घड़ी नित भांडे हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। ये जीवात्मा बोली आत्मा जन्म और मृत्यु के दंड से पीड़ित कर रखे। ये तीनों चेला बटपारी सिरजे पुरसा सिरजी नारी। खोखापुर में जीव बुलाए स्वपन विष्ट बैकुंठ बनाए। इस खोखापुर, ये खोखापुर खाली खाली यानी बेकार लोक है और इसमें ये स्वपन सा बना रखा बैकुंठ, स्वपन की तरह वहां कुछ दिन वहां रहे फिर थोड़ा सी लाखियों नियों में फिर पुनः हो गए तो गए ना तो ना भी जान पावे। ये है अरहट का कुआ लोई यागड़ बन जा है सब कोई। जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु रहट का कुआ, नीचे से पानी उठाओ ऊपर बाल्टी खाली कर खाओ फिर भर ले जाओ। ये देखिएगा अरहट का कुआ, ये अरहट का कुआ एक रहट का कुआ होता था, हमने देखे हैं, ये आपने तो नहीं देखे होंगे बच्चा ने। ये नीचे कुआ है, ये जल है नीचे और ये बाल्टियां हैं, ये एक चैन के ऊपर बाल्टी इसको जोड़ रखी है, इनको वेल्ड कर रखा है और ये एक चक्कर है, व्हील है, पुली है, इसको आगे से एक कोल्लू की तरह जैसे कोल्लू चलता है बैलों से चलाया जाता था, तो ये पुली घूमती नीचे साथ में इसके बाल्टियां नीचे से घूमती हैं। नीचे ये कुआ है, इसकी एलिवेशन दिखा रखी है साइड से काट कर समझो, ये जल भरा हुआ यहां तक, तो ये बाल्टी जब ये पुली घूमती है ये बाल्टियां नीचे आती हैं खाली, यहां से भरती हैं, यहां भर के ऊपर चली जाती हैं, ये नीचे खाली होती हैं और फिर ये पानी यहां से खेतों में चला जाता है सिंचाई करते थे। तो कहते हैं जो पुण्य तुमने किए ये ऊपर खाली करे, फिर खाली बाल्टी नीचे आई, फिर कर्म किए, फिर ऊपर गए, फिर मृत्यु होगी, फिर पुनः पाप किए, पुनः स्वर्ग में पाप नरक में खत खाली करे, फिर वापस आए, फिर गए, यानी जन्म मृत्यु का यो रेट कैसा कुआ तुम्हारे चल रहा है। ये अरहट का कुआ लोई या गड़ बन जा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा है, ये चीटी कीड़ी और ये हाथी, हाथी और ये महेश विष्णु और ब्रह्मा रूपी अवतार, ब्रह्मा विष्णु कीड़ी कुंदर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा, इनकी भी कई बार जन्म मृत्यु हो लियो शंखवार, ये फिर ऊपर खाली हो का है नीचे भर के जहां, ये फिर दूसरे नए ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं। ये अरहट का कुआ लोई या गड़ बन जा है सब कोई, कीड़ी कुंदर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा, असंख्य बार जन्म और मृत्यु आप जी के हो लिए। अरब अलील इंद्र हैं भाई, हरट डोर बंधे सब आई, शेष महेश गणेश सरताही, हरट डोर बंधे सब आई, शुक्राजिक ब्रह्माजिक देवा, हरट डोर बंधे सब खेवा। ये कोटिक करता फिरता देखा, ये कोटिक करोड़ों करता बन रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश, हमने यहाँ 84 लाख योनियों में फिरते देखे। कोटिक करता फिरता देखा, हरट डोर कहूं सुन लेखा, ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये है खोखापुर का कुआ, इसमें पड़ा सो निश्चय मुआ, ये खोखापुर का कुआ है, ये काल के 21 ब्रह्मांड जो इनमें फंस गया उसकी जन्म मृत्यु अवश्य होगी। अपनात्मा यहां ये कड़वी दवाई प्याजी और इसकी थोड़ी सी एक लालटेन दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जिस वाणी को दास बोलकर सुना रहा है ये आज तक किसी ने नहीं पढ़ी ना मानी, और जिन सदग्रंथों का हम सत मानते हैं यदि उनमें ये बात मिल जावे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है, ये चतुर्भुजी भगवान कहां है, हर टोर बंधे सब आवे, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, तो हमारा गला उतर जाएगी। नहीं तो इस वाणी को इस ज्ञान को, क्योंकि अब ये परमात्मा की दया हो रही है सीडियों के माध्यम से कैस्टों के माध्यम से, अब ये परमात्मा की कृपा से एक पवित्र चैनल भी हो रहा है, जी जागरण पर चल रही है, सौभाग्य है उन पुण्य पुण्य प्राणियों का जिसने ये चैनल लाया, और सौभाग्य उन प्राणियों का जिसके माध्यम से जिनको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा, तो इसमें ये ज्ञान जा रहा है और श्रोता नए नए देख रहे हैं, उनको तुरंत अगर इसका प्रमाण नहीं मिला तो परमात्मा के बच्चे अपने भगवान से वंचित रह जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा प्रकरण और दिखाऊंगा, देखिएगा रह रह कर दिखाना पड़ेगा। ये श्रीमद देवी भागवत है, गीता प्रेस गोरख से प्रकाशित है, और इसके 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, बार बार नहीं दिखाता समय का अभाव है। ये तीसरा स्कंद है, 123 पृष्ठ है, इसमें विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा से अपनी माँ से, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, महिमा कह रहे हैं उसकी, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्ही तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु होता है, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। भगवान शंकर बोले, ये देवी यदि महाभाग विष्णु तुमसे तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, उन तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, इस संसार की सृष्टि और स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी शंकर। धर्म दास ये जग बौराना, कोई न पावे पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कही ये वो राम नियारा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, कबीर देव जी की असीम कृपा से हम सभी को ये तत्व ज्ञान और ये सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। परमात्मा कबीर जी ये पूर्ण ब्रह्म है, अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को आकर के यहां मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान समझाते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि तुम यहां काल के जाल में फंसे हुए हो, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ये संतान, ये संपत्ति, ये कार और कोठी ये आपकी नहीं है, यहां काल के लोक में जो व्यवस्था तुम बनाने में लगे हुए हो ये तुम्हारा मूल कार्य नहीं है। जैसे बच्चा जब युवा हो जाता है, बाल अवस्था से ही उसकी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, जैसे आजकल तो शिक्षा का दौर ज्यादा हो गया, पहले शिक्षा नहीं थी, बच्चों को खेतों में जैसे किसान होते थे तो अपनी खेती के कार्य में बचपन से ही लगा दिया करते थे किसान लोग। ऐसे ही कोई दूसरे व्यवसाय हैं जिसका जैसा भी व्यवसाय था अपने बच्चों को बचपन से ही उसी कार्य में जोड़ दिया करते थे, उसी की ट्रेनिंग दिया करते थे और यही सोच रखा था कि हम मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को यही करना होता है, संतान उत्पत्ति, उनकी परवरिश, फिर उनका विवाह, फिर उनका परमात्मा संतान दे, बस इतना ही काम हमारा मनुष्य जीवन का हमने मान रखा था। अब परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया कि ये तो कार्य जो तुम कर रहे हो, जो संतान उत्पत्ति, फिर परवरिश, विवाह शादी, ये पूर्व निर्धारित है बच्चों की, और आप जी का जो कर्तव्य कर्म है वो अवश्य करना चाहिए, लेकिन एक मूल कार्य और है जिसको तुम भूल गए हो। वो मूल कार्य कौन सा है? परमात्मा की भक्ति, पूर्ण परमात्मा की सत्साधना। उससे हमें लाभ क्या होगा? क्योंकि हम इतने लालची हैं, बगैर किसी लोभ या लालच के हम कोई कार्य नहीं करते, तो हमने ये लोभ लाभ पता चलेगा कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की सत साधना करने से हमारे को सतलोक प्राप्त होगा। वो सतलोक कैसा है? उस सतलोक में हम करेंगे क्या जाके? क्योंकि आज तक हमें उस सतलोक की जानकारी किसी ने नहीं दी, कबीर परमेश्वर ने ही आकर के उस सतलोक सचखंड की जानकारी दी है। उसके बाद ये नकली पंथ बहुत से चल गए जिनको सतलोक के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, लेकिन परमात्मा कबीर जी की वाणी को पढ़कर उसका उल्टा सुल्टा ज्ञान लगाकर, उल्ट सुल्ट उसको बनाकर के अलग से पंथ बना बैठे, वो भी जनता को भ्रमित ही कर रहे हैं। तो उस परमेश्वर ने आकर बताया कि तुम सतलोक में रहा करते थे पहले, तो सतलोक में किस लिए चले? जैसे हम स्वर्ग में जाना चाहा करते थे। स्वर्ग में जाना क्यों चाहते थे? क्योंकि कहते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है, और वहां बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छा लोक है, वहां फलदार वृक्ष हैं, दूधों की नदी बहती हैं। लेकिन अब तत्व ज्ञान जो परमेश्वर कबीर जी ने आके हमें दिया है, उसके आधार से हमें पता चला है कि ये स्वर्ग तो एक ऐसी व्यवस्था है जैसे कोई धनी व्यक्ति, कोई रिच मैन जिसका अच्छा व्यवसाय चल रहा है, वो 20-30-50 हजार रुपए उसके लेकर के गर्मी के महीने में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि स्टेट्स में, राज्यों में मई और जून में बहुत गर्मी पड़ती है। तो जिनके पास अच्छा पैसा हो, वो पैसे वाला रईस व्यक्ति 50,000 रुपए लेकर और शिमला, कुल्लू, मनाली चला जावे। वहां किसी रेस्टोरेंट में, होटल में कमरा किराए पर ले और वहां रहे, उसको वहां सारी सुविधाएं मिलेंगी। बने बनाए मकान है, कमरा है, उसमें बेड है, बिस्तर, खाने पीने की सारी व्यवस्था होगी। घंटी बजाते ही उनके पास सब आहार पहुंच जाएगा। लेकिन उसके पैसे खर्च स्वयं के हो रहे हैं और महीना दो महीना वहां रहेंगे, 50,000 रुपए नुकसान करके, वो वेस्ट करके फिर अपने कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे और अगले वर्ष हो सकता है ऐसा व्यवसाय ना बन पावे, 50,000 रुपए ना जुगाड़ जोड़ होए, तो फिर उस शिमला और कुल्लू मनाली भी नहीं जा सकता। अब ये स्वर्ग है, ये एक रेस्टोरेंट होटल समझो, वह भक्ति के धनी व्यक्ति जा सकते हैं और वहां उन्हीं के पुण्यों से उनको वहां सब सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे रेस्टोरेंट में हुआ करती हैं, होटल में होती हैं। और जिसमें उनकी पूंजी समाप्त हो जाएगी, पुण्य अक्षीण हो जाएंगे, उस स्वर्ग से निकाल दिए जाएंगे, उनको फिर पाप के आधार से नरक डाला जाएगा। नरक के बाद फिर उनको 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट भोगने के लिए पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा। तो परमेश्वर कबीर जी ने हमें बताया कि वो सतलोक ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी संसार में कभी नहीं आते और वहां आपके पुण्य अक्षीण नहीं होते। वहां ऐसी ही सृष्टि है जैसी आप जी यहां देख रहे हो। सतलोक में केवल मानव है, अन्य प्राणी नहीं है। वहां पर बहुत सदाबहार बाग हैं, सदाबहार सब काजू किस्म, सेब संतरे, कभी नष्ट नहीं होते, कभी सूखा नहीं पड़ता, कभी फलड़ नहीं आती। गर्मी और सर्दी वहां नहीं है, बहुत सुंदर मौसम है। वहां ये पांच तत्व का शरीर नहीं है, वो नूर से बना हुआ शरीर है, एक तेज से बना हुआ शरीर है जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान सत्संग से ही प्राप्त होता है। परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग की व्यवस्था प्रारंभ की। परमेश्वर स्वयं ही बताया करते थे, आप ही वो दास बनते हैं, आप ही भगवान हैं और स्वयं ही वो एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे शिष्य की भूमिका भी उन्होंने की। तो परमात्मा ने बताया कि सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखा देवे वो सतगुरु है दातार। के सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, वो एक ऐसी भूली हुई वस्तु को याद दिलाएंगे, वो ऐसे दातार हैं, ऐसे दयालु हैं। पुण्यात्माओं, हम अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय भेजते हैं और विद्यालय में वो बालक प्रतिदिन जाते हैं छुट्टियों को छोड़कर। एक वर्ष में लगभग वो 250 दिन अवश्य जाते हैं, 250-300 दिन अवश्य जाते हैं और लगभग बीए करने के लिए भी उसको 14 वर्ष कंटिन्यूस जाना पड़ता है और 16 पढ़े तो 16 वर्ष जाना पड़ता है। एकाधी बार फेल हो जाए तो और एक्सटेंड हो सकता है वो पीरियड। तो उसके बाद इतना पैसा इतना समय लगाकर वो बच्चा केवल एक पेट भरने की व्यवस्था को सुचारू कर पाने में सफल होता है। पुण्यात्माओं, हम इस प्रोसीजर से परिचित हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले से, कि इसी प्रकार होता है और ऐसे ही इनको आगे चलकर सुविधा प्राप्त होती है। जिसमें हम इस परमात्मा के विधान से परिचित हो जाएंगे कि यहां बहुत थोड़ा समय आने में भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, और वो लाभ ऐसा होगा जो आप जी के इस वर्तमान जीवन में भी सहयोगी होगा। क्योंकि पूर्ण परमात्मा की साधना करने से हमें एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट यहां ये मिलता है कि हमारे भाग्य में कोई कष्ट है, दुख है, उस पाप कर्म के दंड को पूर्ण परमात्मा कबीर जी समाप्त कर देता है, नाश कर देता है, वो पाप हमें हानि नहीं करता। दूसरी हमें ये एक और सुविधा मिलती है कि यदि हमारे भाग्य में कोई अच्छी वस्तु नहीं है जिसकी हमें आवश्यकता है इस जीवन में, तो कबीर परमेश्वर आपके भाग्य में वो भी लिख देता है। जैसे हम श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, इनकी पूजाएं हम करते थे तो हमें केवल किया हुआ कर्म ही मिलता है। इसी प्रकार ब्रह्म, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं, 21 ब्रह्मांड का ये प्रभु है, इसे ज्योति निरंजन और काल भी कहते हैं, इसकी साधना से और इनके पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से हमें केवल वर्क डन ही मिलता है। जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। इसमें दोनों ही हमारे अकाउंट खुले रहते हैं, पुण्य के भी और पाप के भी। पुण्य और पाप ये दोनों ही हमारे जो अलग अलग खाते चलते हैं, अकाउंट चलते हैं। जितने कोई पुण्य आपके स्वाभाविक होते हैं या विशेष रूप से करते हैं, उन दोनों अंकित हो जाते हैं, वो लिख दिए जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। और जो पाप आप जी करते हो, आप जिसे स्वाभाविक होते हैं या जानबूझकर करते हो विशेष रूप से, तो वो दोनों ही पाप आपके बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं, पाप अकाउंट में, और आप जी को फिर दोनों ही भोगने पड़ते हैं। वो कर्म आपके भोग कर ही समाप्त होते हैं। और यही विधान आज तक के जितने भी ऋषि महर्षि ये हुए हैं नकली, इनको केवल इतना ही विधान प्राप्त था कि कर्म तो भोगने से ही पूरा होगा। और जबकि हमारे वेद और हमारे सदग्रंथ और जिन जिन महापुरुषों ने परमात्मा मिले, प्राप्त हुए, उनका विधान है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष हमारे पाप कर्मों का नाश कर देता है। अपुण्य आत्माओं, आप जी जैसे पुण्य करते हो, ये साधना जब तक आपको नहीं मिली थी, आप जी पुण्य का तरीका क्या अपना रखा था आपने? पुण्य का तरीका अपना रखा था कि भाई वो भी कोई एकाध पुण्यात्मा होती थी हजारा मत एक, कि तो कुत्तों ने टूक डाल दे, कि तो चिड़ियों को पक्षियों को दाने डाल दे, या फिर कहीं छोटा मोटा भंडारा करवा दे। ये तो थे आपके पुण्य जो विशेष रूप से करने से होते हैं। कुछ पुण्य ऐसे होते हैं कि आप खाना खा रहे हो और आपने रोटियां ऐसे साफ की, कुछ कण जमीन में गिर गए आटे के, वो स्वाभाविक हो गए, वो पुण्य नहीं किया आपने, फिर भी हो गया, किसी चींटी का मुंह लग गया या किसी और छोटे जीव जंतु ने वो खाया, तो वो भी आपके पुण्य में, स्वाभाविक पुण्य में लिख दिया गया। और उधर से आप जी जैसे पाप कुछ तो जानकर करते हैं, जैसे मांस मिट्टी खाते हैं, मुर्गे काटते हैं, बकरे काटते हैं, भैंस गाय जोटों ऊंटों तक काट कर खा जाते हैं, वो तो विशेष रूप से पाप किए, चोरी करते हैं, जारी करते हैं, लूटते हैं, ठगते हैं, हत्याएं करते हैं, वो तो विशेष रूप से जो पाप है वो किए। और कुछ स्वाभाविक पाप हैं, जैसे सुबह उठकर पोछा लगाते हैं, वो स्वाभाविक पाप है। आप पैदल चलते हो, पैरों चलते हो, या गाड़ी मोटर में चलते हो, तो वो आपके पाप हुए, वो स्वाभाविक पाप हैं, वो भी आपके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं। और जो जानबूझकर किए जाते हैं, कोई शिकार खेलने जाते हैं, शिकार खेलना करते पहले जो जीव हिंसा करने जंगल में चले जाते हैं राजा लोग बकवाद करने के लिए, और मारते हैं उन शरीफ जानवरों को, तो इस तरह के जो पाप हैं विशेष रूप से किए हुए और स्वाभाविक हुए। अब जैसे किसान खेती करता है तो हाली हल जोतता है खेतों में, जमीन खोदता है यानी बाता है, संवारता है खेत को, तो ना जाने कितने जीव जंतु उसकी फाली, हल्की फाली के द्वारा बैलों के पैरों के नीचे, उसके स्वयं के पैरों के नीचे ना जाने कितने जीव मर जाते हैं। और वो उनको मिट्टी ऊपर उठा देकर डाल देती है, और फिर उनको वो ऊपर आ जाते हैं मिट्टी में, फिर उनको ये पशु ये पक्षी खा जाते हैं। तो ये सारा पाप उस किसान के बैड अकाउंट में लिख गया, पाप में लिख दिया गया। फिर उसमें फसल होती है, किसान फसल बोता है, गेहूं है, बाजरा, ज्वार, जो भी वो फसल बोता है, तो वो कुछ स्वाभाविक उसमें से दाने गिर जाते हैं जमीन में, वो कणक गिर जाती है, तो कुछ पक्षी खाते हैं, कुछ जीव जंतु खाते हैं, वो उसके स्वाभाविक पुण्य भी बन रहे हैं। तो ऐसे ये दोनों प्रकार के पुण्य, स्वाभाविक और विशेष रूप से किए हुए पुण्य और स्वाभाविक और विशेष रूप से किए हुए पाप, ये दोनों ही आप जी के अलग अलग लिख दिए जाते हैं, और इन दोनों का ही आपको ये फल भोगने को प्राप्त होता है। तो पुण्यात्मा जो साधना भी नहीं करते, ऐसे कर्म करते हैं, उनको भी कुछ पुण्य हो जाते हैं और उनके पाप भी खूब हो जाते हैं, तो उनको दोनों ही भोगने पड़ते हैं। और जो इन तीनों गुणों की भक्ति करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और दुर्गा और ब्रह्म और परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष जो सात संग ब्रह्मंड का स्वामी है, इनकी जो पूजाएं करते हो, साधना भी करते हो, इनके वेदों अनुसार ओम नाम के जाप और यज्ञ आदि भी करते हो, तो भी आपको दोनों ही भोगने को मिलेंगे। ओम नाम के जाप से, ये ब्रह्म का जाप है, इससे साधक यदि बहुत अधिक जाप किया है, केवल ओम ओम कर लेने से 10-20 बार इससे कोई लाभ नहीं होता, बहुत अच्छा, जैसे पहले ऋषि लोग करते रहते थे, बैठे रहते थे काफी हजारों वर्षों तक, तो उनको स्वर्ग, महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक प्राप्त होता था, और वहां बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन पुण्य और भक्ति अपनी ही नष्ट होती है, तब वहां सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उसके बाद फिर नरक भी जाना होता है, और उसके पश्चात फिर ये 84 लाख योनियां भी आपने भोगनी पड़ती है। इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, और इसके विपरीत पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की साधना करने से आपके पाप का नाश कर दिया जाता है, वो जला दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। कैसे करता है कबीर परमात्मा, कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो, कबीर परमेश्वर जी यानी पूर्ण ब्रह्म की साधना से, कबीर जी की साधना से जो सत मंत्र ये दास आपको देगा, यथार्थ मंत्र जो आपको दिए जाएंगे, मर्यादा में रहते हुए तुम साधना करते रहोगे, तो क्या बताया है, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने गाश, जैसे हजारों मण, हजारों टन कोई सूखा घास पड़ा हो किसी अक्षेत्र में, तो उसने बहुत ज्यादा अक्षेत्र को कवर कर रखा है और उसमें एक माचिस की सींक जला के उसमें लगा दे तिल्ली, तो वो सारे घास को जला के राख कर देगी और वो थोड़ा सा बन जाएगा जो पूरा, और फिर चलेंगी तेज हवाएं उसको इधर उधर फेंक फांक कर वहां से कति क्लियर कर देंगे। तो ऐसे ही परमात्मा कबीर जी के सच्चे नाम तय हैं, आप जी के वो संचित कर्म और इंक्लूडिंग ये प्रारब्ध कर्म ये सभी नष्ट हो जाते हैं और साथ में क्रियावान कर्म भी प्रतिदिन नष्ट होते हैं जो पाप हैं। कर्मों को तीन प्रकार तीन भागों में विभाजित किया गया है, एक तो संचित कर्म जो जन्म जन्मांतर के आपके इकट्ठे हो चुके हैं, दूसरा प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म उन संचित कर्मों में एवरेज लेकर के जब पुण्य जिसके पुण्य ज्यादा हैं कुछ और पाप कम है तो उनको पुण्य ज्यादा मिला दिए उनके जीवन में और पाप कम यानी दुख कम सुख ज्यादा है उनको इस मनुष्य जीवन में, तो वो जो पहले लिख दिया जो प्रारब्ध वो प्रारब्ध कर्म है, आपको वो भोगना ही पड़ेगा जब तक आप परमेश्वर कबीर भगवान की साधना पूर्ण संत से लेकर नहीं करते। और तीसरा जो है क्रियावान कर्म है जो वर्तमान में आप मनुष्य जीवन में कर रहे हो। तो जैसा कि आपको बताया कि प्रतिदिन जैसे पोचा लगाते हैं झाड़ू लगाते हैं और अपने कार्य वसी इधर उधर हम घूमते फिरते हैं, इनमें भी पाप होते हैं, तो ये क्रियावान कर्म है या जानबूझ कर करते हैं। तो जब यथार्थ ज्ञान हो जाएगा परम संत आपको मिल जाएगा तो आप जानबूझ कर पाप नहीं कर सकते, और करते हो तो फिर आपकी भक्ति नष्ट हो जाती है और भक्ति आपकी चलेगी नहीं। अनजाने में पाप कौन से होते हैं, जैसे अनजाने में भी बहुत पाप होते हैं, ना किए हुए पाप स्वाभाविक पाप भी बहुत होते हैं, और आपके पास जो मंत्र आपको दिया हुआ है मर्यादा में रहकर आप करोगे तो प्रतिदिन के आपके किए हुए क्रियावान कर्म भी आपके डेली नष्ट होते रहेंगे। जैसे ये कपड़ा मैला हो गया प्रतिदिन पहनते हैं स्वाभाविक है, तो इनको प्रतिदिन धो ले वे साबुन और जल से तो वो मैल डेली साफ हो जाएगा। इस प्रकार ये मंत्र ये सुविधाएं आपको भक्ति सुबह के नित्यनेम रमैणी आरती और मंत्र दे रखे हैं जाप करने के, ये प्रतिदिन और ये धर्म दान हाथ से सेवा यहां आते हो सेवा करे, तो ये सब कर्म इन साधनों से आपके ये क्रियावान कर्म प्रतिदिन नष्ट होते रहेंगे। और साथ में जो संचित कर्म है वो उस सतनाम और सारनाम के सिमरण से नष्ट हो जाएंगे। पुण्यात्माओं यदि क्या इन अभी तक जितने भी संत ऋषि महर्षि ये नकली हुए हैं इन्होंने यही बताया है कि किए हुए कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, पाप नाश नहीं होते, कर्म तो भोगने से ही समाप्त होता है। पुण्यात्माओं यदि कर्म भोगणते समाप्त हो तो कभी भी नंबर नहीं आवा हमारा सतलोक जान का, कभी भी हमारा टर्न नहीं आ सकता। तो परमात्मा कबीर जी के पास एक ऐसा मंत्र है जो आपके पापों का नाश कर देगा और पुण्य ज्यों के त्यों रह जाएंगे। जैसे आजकल एक दवाई खोज कर ली है, औषधि खोज कर ली है वैज्ञानिकों ने, फसल में डालते हैं फसल में खरपतवार उत्पन्न हो जाता है, उसमें दवाई डाल देते हैं मेडिसिन, वो घास को फूंक देती है, फसल ज्यों की त्यों रह जाती है, स्वस्थ रह जाती है। वैसे वो मटेरियल वो केमिकल्स वो साल्ट पहले ही था, विद्वान परमात्मा ने दे रखा था लेकिन उसकी खोज नहीं हो पाई थी, अब उसकी खोज होगी, उसकी खोज होगी तो लाभ मिल गया। तो ऐसे ही ये सत मंत्र परमात्मा ने पहले ही हमें दे रखा था, सदग्रंथों में लिखा था, लेकिन ये संत ऋषि महर्षि ये नकली इसको खोज नहीं सके। अब इसकी खोज होगी है तो इसका लाभ उठाना चाहिए, आपके पुण्य बच जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, इस साधना से जो दास बताता है। तो अभी तक हम भ्रमित कर रखे थे, जिनको हम ऋषि महर्षि माना करते थे उनको कति ज्ञान नहीं था भक्ति के बारे में, ना वो वेदों से परिचित थे। उसके लिए आपको थोड़ा सा उदाहरण देते हैं, आपको दिखाते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के ज्ञान की झलक, उसके विचार, और फिर दिखाते हैं राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के विचार। कहते हैं जो सौदागर सौदा करते हैं तो वो एक बोरी में परखी मार के, एक लोहे की गोल गोल सी व्याकर 6 इंच 7-8 इंच लंबी गोल गोल, उसको ऐसे नुकीली सी उस बोरी में घुसो देते हैं, फिर निकाल लेते हैं। तो उसमें बोरी के अंदर से जो सामान है, कणक है, गेहूं है, बूरा है या कुछ भी है, वो कुछ बाहर आ जाती है उसके साथ। तो उससे देख करके वो सौदा कर लेते हैं कि इस बोरी में ये माल है, सारी बोरी खोलने की बजाय वो इतना ही देख लेते हैं। तो आप जी को देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का ही ज्ञान सुना देंगे तो इससे सिद्ध है कि सभी देवता उसी से ज्ञान प्राप्त है और उनको इतना ही नॉलेज है। इसी प्रकार ये राक्षसों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, पुण्यात्माओं, ये राक्षस कोई अलग नहीं थे, ये वही व्यक्ति थे जो अच्छी आत्माएं थी, पहले भक्ति करते थे वेदों अनुसार, जैसा भी ज्ञान इनको प्राप्त था। फिर कुछ एक ऐसे थे जो मर्यादा नहीं रखते थे, साधना भी करते थे, फिर गुटी सुटी भी लाने लग गए, ये देव दारू बना ली ने और मांस भी खान लग गए। तो दूसरे जो व्यक्ति थे जो मर्यादा में रहकर साधना करते थे अच्छी आत्मा, वो उनसे नफरत करने लगे। तो वो उनसे उनको असर अपने क्रियाओं में अपने सत्संग में आने से उनको मना करने लगे। तो वो जो साधना भी करते थे साथ में बुराइयां भी करते रहे, तो वो ईर्ष्या करने लग गए उनसे कि ये हमें अछूत समझते हैं। उन अच्छी आत्माओं को वो जो शराब भी कुआ भी और भक्ति भी करते थे वो दुखी करने लग गए। इस प्रकार उनको राक्षस की संज्ञा दे दी गई, बाकी वो साधना फिर भी करते रहे। उन साधनाओं से जो बुराइयां भी करते हैं और भक्ति भी करते हैं वो यूजलेस होती है, फिर भी वो बाद नहीं आते हैं, क्योंकि ज्ञान ना होने से ये प्राणी अपनी मनमुखी साधनाएं ज्यादा करता है, मनमुखी क्रियाएं करता है। जैसे कोई नाम ले रखा किसी भक्त ने और जिसकी बुराई ना छूटती तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। जैसे एक समय ये दास एक गुराना गांव में सत्संग कर रहे थे, बाहर खेतों में उनका सड़क के ऊपर मकान, वहां पाठ कर रहे थे। वहां एक भगत आ गया व्यक्ति, कोई गुहाना का, गुहाना से एक किसी संत से नाम ले रखा था उसने। उसने देखा यहां सत्संग हो रहा है, वो भी आ गया, फिर प्रश्न उत्तर करने लग गया। उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे एक भरथू सा नाम का कोई संत था नकली, उससे उपदेश ले रखा था। उसके बारे में इस दास को पता था कि वो स्वयं भी हुक्का पीता था और उनके अनुयायी भी हुक्का पीते हैं, वो शराब भी पीता था। तो मैंने उससे कहा कि आपने वहां से नाम ले रखा है कहां जी? फिर मैं, वो तो भाई हुक्का भी पीवे। ने बोला वो तो हुक्का पीवे, मैं शराब भी पीता हूं। मैं, तुम्हारे गुरु जी तो हुक्का पीते थे और जो भाई हुक्का पीवे और तंबाकू प्रयोग करते हैं, सिगरेट पीवे, वो भक्ति नहीं उनकी बनती। तो वो कहता है मैं तो शराब भी पीता हूं और साधना भी करता हूं। मैं बोला भाई फिर तो तेरी भक्ति नहीं चलेगी, ये सब छोड़कर भक्ति करनी चाहिए। कहने लगे हमने फिर इसे नाम की जरूरत नहीं जो गुड़ की बांपते ड्रिज्जा भगवान, यानी उस नखमी आत्मा ने बुराई छोड़ने की बजाय अपना तरीका ढूंढ रखा कि इसे भगवान की, इसे नाम की हमें और आवश्यकता नहीं, जो गुड़ की भाप से डर जाता है और खराब हो जाता है। तो ऐसे तो नकमी आत्मा, तो उनको फिर जैसे ऐसे ही पहले लोग अलग अलग हुए, राक्षस और देवता बने, ये ऐसे बने थे। अब इन दोनों के ही, और लेकिन आत्मा जो है चाहे राक्षस में है चाहे देवताओं में है, वो भगवान बिना नहीं रह सकती। आप देखिएगा कोई कसाई भी है, वो भी अपने कोई इष्ट को मानकर फिर कार्य शुरू करता है। ये डाकू हैं, चोर हैं, ये भी अपना कोई इष्ट देव मानकर उसकी पूजा पाजा करके फिर बकवाद करने चलते हैं। तो पुण्यात्माओं, वो बकवाद तो बकवाद ही रहती है, वो देवता उनकी मदद नहीं कर पाएंगे ऐसे निकम्मिया की। बाकी उनकी सोच है कि हम ऐसा कर रहे हैं, कभी दाव लग जाता है उनका तो सोचते हैं आज हमारे देवता ने सही दाव लगवा दिया। नहीं, देवता कभी भी ऐसे गंदे काम में सहयोग आपका नहीं देंगे, ये आपकी भूल है। अब आप जी को दिखाते हैं ये श्रीमद देवी भागवत में इन देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के विचार। देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, ये वही पवित्र शास्त्र हैं जिनको पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी सत मानते हैं और इन्हीं पर आधारित थे श्रीमद देवी भागवत संक्षिप्त, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। यहां देखिएगा, ये है पांचवा स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 282 पृष्ठ पे। ये व्यास जी और इंद्र की आपस में वार्ता हो रही है। व्यास जी कहते हैं, व्यास जी कौन है? ये राइटर हैं, लेखक हैं पुराणों के, वेदों के और श्रीमद् भगवत गीता जी के। ये व्यास जी कौन है? श्री वेद व्यास जी ये वेदों और श्रीमद् भगवत गीता और 18 पुराणों, महाभारत और सुधा सागर आदि के ये लेखक हैं।